नमस्कार, मैं रवीश कुमार। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 200 साल पुराना बैंक है और भारत का सबसे बड़ा बैंक है। जिस बैंक के पास 48 करोड़ ग्राहक हों और वो बैंक कहे कि 21 दिनों के भीतर इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब किताब नहीं दे सकता है, यह बात सभी को परेशान कर रही है। स्टेट बैंक की अपनी विश्वसनीयता है। इसके प्रबंधकों ने जब से सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जानकारी देने के लिए 136 दिन लगेंगे, लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मजाक उड़ा रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। उन्हें इसकी आशंका है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 16,000 करोड़ का घोटाला छिपा लेगा। यह फैसला जिसका भी होगा उसका कुछ चेहरा होगा, नाम होगा। आज हम उन चेहरों की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोर्ट की अपील पर कोई फैसला नहीं दिया है, मगर इन लोगों के कारण लोगों का दिल बैठ गया है कि अब चंदे का खेल खेलने वाले घोटालेबाजों का नाम चुनाव से पहले सामने नहीं आ सकेगा। हम नाम और चेहरे की बात इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हर जगह बैंक का नाम और उसका लोगो ही चेहरा बना हुआ है। जैसे कांग्रेस ने यह पोस्टर जारी किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लोगो दरवाजे का की होल है। कांग्रेस ने दिखाया है कि इसके पीछे से प्रधानमंत्री मोदी झांक रहे हैं। लिखा है SBI किसको छिपा रहा है। इस तरह के लोगों से पता नहीं चलता कि इस बैंक को कोई आदमी भी चलाता है। इतने बड़े बैंक की छवि दांव पर लगाने वाले उन शख्सियतों के बारे में थोड़ी बहुत तो जानकारी आपको होनी ही चाहिए। नोटबंदी के समय तो किसी बैंक ने नहीं कहा कि हम नहीं कर पाएंगे, हमें 4 महीने का समय चाहिए। बस सबको जुटना पड़ ही गया और किया भी गया। फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसे बचाने के लिए 136 दिन मांग रहा है। इस तरह का फैसला लेने वाले ये लोग कौन हैं? आप जानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड बेचने की अनुमति केवल स्टेट बैंक को मिली थी, मगर 15 फरवरी के फैसले के बाद बॉन्ड बेचने पर रोक लगा दी गई। इसे असंवैधानिक मानते हुए रद्द कर दिया गया। मिलिए दिनेश कुमार खरा से, जो SBI के चेयरमैन है। 2.25 लाख से अधिक कर्मचारियों वाले स्टेट बैंक के चेयरमैन कहीं से गुजर जाते होंगे तो दफ्तरों में सनसनी मच जाती होगी, कुर्सियां छोड़कर खड़े होने की होड़ लग जाती होगी। यह सब अगर नहीं भी होता होगा तब भी स्टेट बैंक के चेयरमैन का अपना रुतबा तो होता ही है। क्या यह रुतबा केवल पद और कुर्सी से होना चाहिए? दिनेश कुमार खरा के नेतृत्व में स्टेट बैंक ने जो फैसला किया है उससे इस बैंक की छवि दांव पर लग गई है। जिस बैंक में हर दिन 23,000 डिजिटल सेविंग अकाउंट खुलती हो, वह बैंक कहे कि 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने में उसे 136 दिन चाहिए, तब फिर उस बैंक के नेतृत्व के बारे में बात बहुत जरूरी हो जाती है। दिनेश कुमार खरा इस समय 10 महीनों के सेवा विस्तार पर हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली नियुक्तियों की कैबिनेट कमेटी ने उन्हें सेवा विस्तार दिया है। अक्टूबर 2023 में इनका कार्यकाल खत्म होने के ठीक एक दिन पहले इन्हें 10 महीने का सेवा विस्तार मिला था। अगस्त 2024 तक चेयरमैन के पद पर रहेंगे। सेवा विस्तार मिलने के पीछे एक कारण यही होगा कि इनसे योग्य कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिला और ना 10 महीने तक मिलने की उम्मीद होगी। सेवा विस्तार के समय दिनेश कुमार खरा ने मीडिया से यही कहा था कि वे डेटा एनालिटिक्स पर काम कर रहे हैं। आज वही दिनेश कुमार खरा इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा की एनालिसिस के लिए 4 महीने मांग रहे हैं। 22,217 इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की डिटेल निकालने के लिए हमारा सवाल है कि ऐसे में इनकी योग्यता पर सवाल क्यों नहीं किया जाना चाहिए? जब बैंक पर सवाल हो सकता है तो बैंक के चेयरमैन पर क्यों नहीं सवाल होना चाहिए? क्या दिनेश कुमार खरा इतिहास में अपना नाम इस तरह से दर्ज कराना चाहेंगे? जिस व्यक्ति का बैंकिंग सेक्टर में 40 साल का अनुभव हो, क्या ऐसा व्यक्ति अपनी जिंदगी भर की कमाई ऐसे लोगों को बचाने में लगा सकता है? उन लोगों को जिन्होंने चंदे के नाम पर लोकतंत्र से धंधा किया और घोटाला किया है। कई लोग स्टेट बैंक के फैसले को इस तरह से भी देख रहे हैं जैसे बैंक ने चंदे के धंधे में शामिल लोगों को बचाकर देश के संविधान की आत्मा और लोकतंत्र की पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है। स्टेट बैंक को लेकर आलोचनाएं तीखी होती जा रही हैं। इसी संदर्भ में हम दिनेश कुमार खरा की बात कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि उनकी भी बात हो जिनके नेतृत्व में स्टेट बैंक ने इतना बड़ा फैसला लिया होगा, जिस फैसले के कारण 15 मार्च तक संविधान के साथ फ्रॉड करने वालों और हजारों करोड़ों का चंदा देने वालों का नाम समय पर नहीं आ सकेगा, तो ऐसे व्यक्ति का नाम भी लिया जाना चाहिए। फैसला स्टेट बैंक के लोगो या साइन बोर्ड ने नहीं लिया है, फैसला लेने वाले महान विभूतियों के बारे में आपको जानना ही चाहिए। दिनेश कुमार खरा अक्टूबर 2020 में स्टेट बैंक के चेयरमैन बनाए गए। दिल्ली विश्वविद्यालय से कॉमर्स और एमबीए की पढ़ाई की है। 1984 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े। एसबीआई और उसके 5 एसोसिएट बैंकों और भारतीय महिला बैंक का जब विलय हुआ उसमें इनकी अहम भूमिका थी। एक समय पर दिनेश कुमार खरा एसबीआई के रिस्क, आईटी और कंप्लायंस के इंचार्ज भी रहे हैं, यानी इनका आईटी के क्षेत्र में अच्छा खासा अनुभव भी है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया है कि वित्त वर्ष 2022-23 में इनकी सैलरी पिछले वर्ष के मुकाबले 7.5% बढ़ा दी गई। अखबार ने इनकी सैलरी के बारे में क्यों रिपोर्ट किया है हमें समझ नहीं आया। डिजिटल कामयाबी को स्टेट बैंक बढ़ा चढ़ाकर बताता है, मगर इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी डिजिटल तरीके से नहीं रखता है। क्यों नहीं रखता है, और अगर रखता है तो मिलान कर डेटा देने में 3 हफ्ते की जगह 4 महीने क्यों चाहिए। दिसंबर 2023 में सीएनबीसी टीवी 18 से दिनेश कुमार खरा ने कहा था कि हम सबके लिए डिजिटल पहली प्राथमिकता है, हमने इसमें काफी निवेश किया है ताकि हम अपनी डिजिटल क्षमता को बढ़ा सकें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाएंगे तो चेयरमैन दिनेश कुमार खरा का ही संदेश मिलेगा, जिसमें उन्होंने पूरा विस्तार से बताया है कि बीते वर्षों में स्टेट बैंक ने क्या क्या हासिल किया है। वे बताते हैं कि वित्त वर्ष 2023 में एसबीआई ने 125,000 रेगुलर सेविंग अकाउंट खोले, जिसमें से 64% डिजिटल माध्यम से खोले गए। ये जानकारी भी दी गई कि 2022 में एसबीआई को आईबीए एनुअल बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स द्वारा बेस्ट डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन की श्रेणी में लगातार 4थी बार नवाजा गया था। दिनेश कुमार खरा जब प्रबंध निदेशक थे तब भी इन्हें 2 साल का सेवा विस्तार मिल चुका है। 2019 में प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यकाल पूरा कर रहे थे तब मोदी सरकार ने इन्हें 2 साल का सेवा विस्तार दिया। 2020 अक्टूबर में चेयरमैन बनाए गए, इस समय 10 महीने के सेवा विस्तार पर हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक अश्विनी कुमार तिवारी को भी 2 साल का सेवा विस्तार मिला हुआ है। जाहिर है काफी योग्य व्यक्ति होंगे तभी 2 साल का सेवा विस्तार मिला है। इतने काबिल व्यक्ति के होते हुए स्टेट बैंक 21 दिनों में 22,217 बॉन्ड की डिटेल चुनाव आयोग को नहीं दे सकता है। क्या इनके नेतृत्व में बैंक दिन रात लगाकर जानकारी नहीं दे सकता था? क्या यह बात उनके बैंक के कर्मचारी नहीं जानते हैं कि जब टारगेट पूरा करना होता है तो बैंकों की हजारों शाखाओं में लाखों कर्मचारी कैसे दिन रात काम करते हैं, ब्रांच में देर रात तक टिके रहते हैं और टारगेट पूरा करने का तनाव झेलते हैं? तब स्टेट बैंक ने यह चैलेंज क्यों नहीं लिया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करके क्यों नहीं देश को दिखा दिया? आप हैं अश्विनी कुमार तिवारी, एसबीआई के प्रबंध निदेशक। इसी जनवरी 2024 में आपका कार्यकाल खत्म होने वाला था लेकिन 2 साल का सेवा विस्तार मिल गया। अश्विनी कुमार तिवारी के 2 साल तक सेवा विस्तार मिलने से कितने लोगों का प्रबंध निदेशक बनने का चांस हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया होगा। इन्हें नियुक्तियों की कैबिनेट कमेटी ने सेवा विस्तार दिया है, यानी हाई लेवल का मामला है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कैबिनेट कमेटी में होते हैं। कायदे से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लागू नहीं कर पाने के कारण सेवा विस्तार पर चल रहे इन अफसरों को तुरंत पद से हटा देना चाहिए, दूसरे अफसरों को नेतृत्व संभालने का मौका मिलना चाहिए। सेवा विस्तार को सरकार की कृपा के नजर से भी देखा जाता है। डू यू गेट माई पॉइंट? अश्विनी कुमार तिवारी के अलावा एक और प्रबंध निदेशक हैं, उन्हें भी 2 साल का सेवा विस्तार मिला है। यह है सीएस शेट्टी। जनवरी 2023 में इन्हें 2 साल का सेवा विस्तार मिला, तब से प्रबंध निदेशक हैं, यानी ये एसबीआई को चलाने वाले 13 सदस्यों के बोर्ड के 3रे सदस्य हैं जो सेवा विस्तार पर हैं। 13 सदस्यों के बोर्ड में एक ही महिला प्रबंध निदेशक हैं, स्वाति गुप्ता। स्वाति गुप्ता पूर्णकालिक निदेशक हैं। इनके बारे में बैंक ने यही लिखा है कि ये 2012 से 17 तक दिल्ली नगर निगम की पार्षद रही हैं और जोनल चेयरमैन रही हैं। उसके बाद 2017 से 22 तक नगर निगम की शिक्षा समिति की मनोनीत सदस्य रही हैं। बैंक ने इन्हें सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद लिखा है। एमसीडी की पार्षद रही हैं, तो किसी पार्टी से रही हो सकती हैं। इसका हमें ठीक ठीक पता नहीं चल सका और यह भी नहीं कि बैंक ने इनकी जानकारी में इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में क्यों नहीं लिखा है। स्टेट बैंक की पूर्णकालिक निदेशक स्वाति गुप्ता और दिलशाद गार्डन की पार्षद रही स्वाति गुप्ता की तस्वीर में बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आता है, मगर फिर भी हम अपनी तरफ से इस वक्त कुछ नहीं कहना चाहते कि वे बीजेपी से ही जुड़ी रही हैं। जबकि सोशल मीडिया पर दिलशाद गार्डन की पार्षद रही एक स्वाति गुप्ता की जो जानकारी मिलती है उससे यही पता चलता है कि उनकी गतिविधियां भारतीय जनता पार्टी की तरफ की रही हैं। जैसे ये फोटो 2013 का है जिसमें स्वाति गुप्ता बीजेपी नेता विजय गोयल को माला पहना रही हैं और यहां स्वाति गुप्ता के हाथ में केजरीवाल शर्म करो का पोस्टर है। फेसबुक पर स्वाति गुप्ता का पेज है, मगर उन्होंने ही बनाया है, हम नहीं कह सकते। इस पेज में बीजेपी का चुनाव चिन्ह है, लेकिन बहुत ज्यादा गतिविधि यहां अब नहीं है। स्वाति गुप्ता जब निदेशक बनाई गई तब मीडिया में इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में कोई जानकारी रिपोर्ट नहीं हुई है, कम से कम हमें नहीं मिली। हमारी जिज्ञासा अभी भी अधूरी है कि स्वाति गुप्ता का संबंध बीजेपी से है या नहीं। वैसे केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि वह बैंक के बोर्ड में अपना एक सदस्य नियुक्त कर सकती है। जो भी है, इस बात की पुष्टि की जा सकती है कि स्टेट बैंक के 13 सदस्यों के बोर्ड में चेयरमैन के साथ साथ 3 सदस्य ऐसे हैं जो सेवा विस्तार पर हैं। हमारा सवाल है कि बोर्ड तक पहुंचने वाले काबिल लोग होते ही होंगे, फिर इन लोगों ने 21 दिनों में जानकारी जुटाने का प्लान क्यों नहीं बनाया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के 3 हफ्ते बाद बैंक सुप्रीम कोर्ट से अपील करता है, तब जब 6 मार्च की डेडलाइन में सिर्फ 2 दिन रह जाते हैं। सेवा विस्तार पर चल रहे नेतृत्व से आप हर काम में सेवा और समय विस्तार के अलावा क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी सालाना रिपोर्ट में लिखा है कि हमारी डिजिटल एप्लीकेशन योनो पर 6 करोड़ से अधिक यूजर हैं। रोजाना औसतन 5.5 लाख लेन देन डिजिटल माध्यम से होते हैं। हर रोज 45,000 डिजिटल पंजीकरण होते हैं। रोज 1 करोड़ बार योनो पर लॉगिन किया जाता है। बैंक की सालाना रिपोर्ट में लिखा है कि आज के समय में यह जरूरी है कि ऐसी संस्था बनाई जाए जो फिजिकली सर्वव्यापी हो। फिजिकल और डिजिटल के विलय से यह शब्द बना है। अगर फिजिकली सर्वव्यापी ही बनना था, फिर क्यों नहीं बैंक ने फिजिकल बॉन्ड की डिजिटल कॉपी रखी।
पहला सवाल हमारा यह है कि इस देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक, पूरी तरह से कंप्यूटराइज बैंक SBI को 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड देने के लिए 5 महीने का समय क्यों चाहिए? यह तो एक क्लिक ऑफ अ बटन पर होना चाहिए। हमारा दूसरा सवाल यह है कि SBI को एकाएक जब अवधि जिस दिन देना था उसके 24 घंटे पहले SBI क्यों जागा? क्या SBI को 25 दिन का टाइम लग गया यह सोचने में कि उनको कितना वक्त लगेगा? और यह एक बड़ा सवाल है। एक और सवाल है, और उसका मैंने उल्लेख भी किया कि 48 करोड़ अकाउंट, 66,000 करीब ATM, 23,000 करीब ब्रांचेस होने वाले SBI को 22,000 महज अकाउंट के लिए 5 महीने चाहिए। यह कितना हास्यास्पद है। SBI पर प्रेशर कौन बना रहा है? इस आर्थिक अनियमितता को, इस काले धन के गोरख धंधे को कौन पनपने दे रहा था? क्यों SBI पर दबाव बनाया जा रहा है? ऐसा क्या हो जाएगा अगर चुनाव के पहले ये नाम सामने आ गए? और सवाल ये उठता है कि क्या लोगों को लोकतंत्र में ये जानने का हक नहीं है कि कौन किस पार्टी को कितना और कब चंदा दे रहा है, जिससे वो देख समझ कर वोटिंग के पहले अपना मन बना सके? ये पूरा गोरख धंधा है, अलायंस अब SBI के साथ की गई है। हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के हर संसाधन, हर संस्थान, हर संस्था पे कब्जा करना चाहती है। पहले CBI, ED और इनकम टैक्स बने नए फ्रंटल, अब लगता है SBI बन गया है। और समझना जरूरी है कि कितना भी षड्यंत्र SBI और सरकार मिलकर रच ले, मोदी जी ने किससे कब कितना पैसा लिया और उसके एवज में जांच बिठाई या जांच बंद करी, उसके एवज में कौन सी नीति बनाई, इसका फैसला जनता करेगी, क्योंकि जनता सब देखती और सब समझती है।
रिटायर्ड कॉमोडोर लोकेश बत्रा ने आरटीआई के माध्यम से बता दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित आईटी सिस्टम बनाने के लिए एसबीआई ने 1.5 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च की है। करण थापर से जस्टिस दीपक गुप्ता ने इंटरव्यू में कहा है कि वे उस बेंच का हिस्सा रहे हैं जिसने 2019 में इस मामले की सुनवाई की थी। जस्टिस गुप्ता ने इंटरव्यू में कहा है कि अप्रैल 2019 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कहा था कि आप इस जानकारी को तैयार रखिए, उसका ऐसा स्वरूप हो कि जब भी आपसे कोर्ट कहे आप जल्द से जल्द साझा कर सकें। जस्टिस गुप्ता रिटायर हैं और उन्होंने कहा है कि वे एसबीआई के इस जवाब को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते हैं और यह पूरी तरह से हास्यास्पद है। करण थापर का इंटरव्यू आप द वायर के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया योनो ऐप से हर तिमाही में 100 करोड़ की कमाई करता है? जिस बैंक की एक ऐप से इतनी कमाई हो उसने 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी क्यों नहीं दी? क्यों उसे 136 दिनों का समय चाहिए? अनेक उदाहरण मिलेंगे जिसमें स्टेट बैंक डिजिटल क्रांति की बात कर रहा है, उसकी खूबियां बता रहा है, लेकिन जब बात इलेक्टोरल बॉन्ड की आई तो ऐसी बातें कर रहा है जैसे यह बैंक मुनीम जी के बही खाते से चल रहा है। इन्हीं सब कारणों से बैंक की नीयत पर शक किया जा रहा है, उसकी अपील को राजनीतिक नजरिए से देखा जा रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में याचिका दायर करने वाली संस्था एडीआर ने कहा है कि वह स्टेट बैंक की अपील का विरोध करेगी। बैंक कर्मचारियों के संगठन बैंक इंप्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया ने प्रेस नोट जारी किया है और कहा है कि वे राजनीतिक मकसद के लिए बैंक के इस्तेमाल का विरोध करते हैं, मांग करते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सारी जानकारी तय समय पर सार्वजनिक करे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।